Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra.
Dhanyavad Nitish. और नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के आज के अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए के भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
नमस्कार, धन्यवाद।
और अब अंग्रेजी में हेडलाइंस मेरे सहयोगी निशित कुमार से।
India's equity benchmark Sensex sheds over 200 points while Nifty 50 ends its 14 days winning streak amid the US recession worries. India's services PMI surges to 5-month peak in August on resilient demand, and oil prices trading with a slight gain after a plunge of more than 4% on the previous day.
अमेरिका में मंदी की चिंताओं के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स में 200 अंकों के ऊपर गिरावट, जबकि निफ्टी के 14 दिनों के बढ़त का सिलसिला टूटा। पीएमआई यानी सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अगस्त में भारत की सेवा क्षेत्र की गतिविधियां 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची और पिछले दिन 4% से अधिक की गिरावट के बाद तेल की कीमतें मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रही हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले शेयर बाजार की खबरें। भारत के प्रमुख घरेलू सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने दिन के कारोबार के निचले स्तर को पुनः प्राप्त किया, जिससे आज सत्र मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी की चिंताओं के बीच घरेलू सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 203 अंक या 0.25% गिरकर 82,353 पर था और निफ्टी ने अपनी 14 दिनों की जीत का सिलसिला तोड़ दिया। सत्र 81 अंक या 0.32% के नुकसान के साथ 25,199 पर बंद हुआ।
India's equity benchmark indices Sensex and the Nifty recovered their intraday lows, ending the session with modest loss today. The decline in the domestic indices can be attributed to the concerns about a potential slowdown in the US economy. At the closing bell, the Sensex, which is a pack of 30 companies, was down 203 points or 0.25% at 82,353, and the Nifty 50 broke its 14 days winning streak, ending the session with the loss of 81 points or 0.32% at 25,199. In the National Stock Exchange, 155 companies hit their 52-week high, 27 hit their 52-week low. And in the broader market, the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index lost 0.15%, while the small-cap index gained 0.26%. And in the Sensex index, 11 out of the 30 companies registered gains. The top gainers today were Asian Paints, which surged 2.39%, Hindustan Unilever added 1.74%, and Sun Pharma advanced 1.18%. Conversely, the major laggards were Mahindra and Mahindra, which lost 1.29%, State Bank of India shed 1.06%, and Axis Bank declined 1.05%. In the sectoral indices of the Bombay Stock Exchange, 15 out of 20 sectors traded in loss. The top laggards were metal, which shed over 1%, information technology lost 0.91%, and telecommunications declined 0.82%. Stock gainers today were healthcare, which got an uptick of 0.9%, realty increased 0.6%, and FMCG added 0.4%. The overall market breadth of the Bombay Stock Exchange was negative, as out of 4,047 companies, shares of 1,910 companies advanced, 2,043 declined, and 94 remain unchanged. Breaking 14 days of winning streak today. Of course, we saw the the U.S. data, the U.S. indices as well falling yesterday, AKB. What do you have to say about it?
Well, I think what we are seeing is that the absence of domestic triggers is telling on the domestic stock market, and that absence has been worsened, or the impact of that absence of domestic triggers has been aggravated by the negative sentiment that you talked about coming out from the U.S. And don't forget that even the Chinese economy is showing signs of weaknesses after early impressive numbers. The U.S., the PMI, the Purchasing Managers Index, is right now showing at around 47.2. Now, remember that if it is less than 50,
yes,
there is a possibility of a contraction.
True.
Now, which is why, the expectation was that it might go up to 49.2 or so. Now, that it did not go up to 49.2, but stayed at 47.2, has itself created a kind of a worry in the U.S. market that the U.S. probably is heading for a kind of a recession. It may be a soft landing, but it will be a recession nevertheless. Also remember, the job numbers that have come out recently are not showing signs of any good news. So therefore, the global triggers, both from the U.S. as well as from China, are actually impinging on the market sentiment domestically here, and which is why you are seeing that good sectoral stocks are not performing to their potential. Also, because remember that when the U.S. economy contracts, then it has a global impact, and emerging markets like India will be impacted. They'll be the first to be impacted.
Well, Akabi, I'd like to take a contrarian view here. You talked about the PMI kind of hovering around 47% or so in the U.S., but we see the latest PMI in India. It's around 60%, and that's too encouraging. Also, when we juxtapose this PMI numbers with the GDP numbers which the World Bank projected day before yesterday to 7% growth.
But you know, what I am saying is this, that the GDP number 7% is actually a little lower than what the RBI expects at 7.2. Now, these GDP numbers have already been factored in by the markets.
Mm-hmm.
So, for the markets, the bigger trigger right now is whether the U.S. will go in to a contraction mode or not. So, which is why I'm saying is this, that the good news that you're talking about, India's good PMI numbers,
yes.
India's good GDP numbers are already factored in. Mm-hmm. And unless those numbers suddenly give you a bigger positive surprise or a negative surprise, I don't think the domestic market will be influenced by them. They will continue to be guided to a great extent by developments in the U.S. and the Chinese markets. Because we are, after all, in the market's point of view, we are a globalized economy. The total FII money that came into the Indian market last financial year was $52 billion. So it's not so. Therefore, the Indian markets are very much impacted by what is happening in the world, particularly the world's largest economy, in the U.S. So therefore, I'm giving more importance and due weightage to what is going to happen to the U.S. economy and its impact on the Indian markets, particularly at a time there are no immediate domestic triggers that I can see right now.
Well, talking of the recession worries in the U.S., how real this is, and we have seen there has been a lot of talk and, you know, a noise about the Fed thing happening with the rate cut and all happening. So do we really see that coming in the coming days?
You know, there are two things that I would like to draw your attention to. One is the Jackson Hole statement by Jeremy Powell, wherein he actually, for the first time in several months, Jeremy Powell has openly said that probably the time for a rate cut has come.
True.
And now, along with that comes this latest PMI number and the unemployment number, which all contribute to a thinking that probably the U.S. economy is going downhill, and at a time when inflation has been broadly been tamed to the targeted level of 2%. It is not yet 2%, but it is close to there. So therefore, inflation is under control, economy is heading for contraction, unemployment numbers are poor, and Mr. Powell has made a public statement that maybe the time for a rate cut has come. So you can expect some sort of action on the part of the US Fed the next month. And you will see the impact of that rate cut also, countering some of the negative vibes that we have seen because of the PMI numbers. Because the moment the rates are cut there, some money will try to flock back to India.
Bhattacharya ji, kamzor global sanket hain, aarthik mandi ki chintayein bhi hain US mein. आगे हम खबरों में बताएंगे, लेकिन एशिया का बाजार जो है वो गिरा है, यूरोप का बाजार गिरा है, तो भारतीय बाजार में खलबली नहीं है, बहुत थोड़ी मामूली गिरावट है, और जो निवेशक हैं उनको चिंता नहीं करना चाहिए, इस बात पे आपकी कितनी सहमति होगी मेरे साथ?
देखिए, जो निवेशक जो है उनको चिंता करनी चाहिए, पर उनके कारण अन्य प्रकार के कारण है. वो कारण जो अमेरिकन मार्केट में या चाइनीज मार्केट में जो है उस कारण के साथ नहीं मिले हुए हैं. जो निवेशक को इसलिए चिंता करनी चाहिए कि उनको सोच समझ के उनको निवेश करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट जो है एक्सपेंसिव मार्केट है, उसमें काफी जिसे मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं फ्रॉथ, जिसे हम कहते हैं कि जो 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 पानी के ऊपर झाग होता है, वो झाग दिख रहा है मार्केट एक्सपोर्ट्स को. तो वो ऐसा न हो कोई निवेशक वो झाग को असली पानी समझ के वो इन्वेस्ट कर दे और अपने पैसे गंवाए. तो मैं कहूंगा कि निवेशक को और भी सचेतन और सजग होकर इस वक्त इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मार्केट की जो पोजीशन जो है वो एक्सपेंसिव है और एलिवेटेड पॉइंट में है. आईपीओ बूम चल रहा है, और वो आईपीओ बूम में कितने आईपीओ खड़े उतरेंगे या कितने दिन तक खड़े उतरेंगे, वो उसके ऊपर काफी आलोचना तर्क चर्चा हो रही है. तो मैं समझता हूं कि इस समय निवेशक को पॉजिटिव सेंटिमेंट होना चाहिए, पर उसके साथ साथ सजग और सचेतन होना चाहिए.
तो निश्चित तौर पर जो निवेशक हैं वो सजग रहें, सतर्क रहें, इसी बीच रूपया का हाल जानते हैं. विदेशी मुद्रा बाजार में आज नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच एक सीमित कारोबारी सत्र के बाद भारतीय रूपये में गिरावट आई. दिन के अंत में स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.97 रूपये पर बंद हुई. दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 101.66 पर कारोबार कर रहा था. और अब जो है, हाँ, अब एक अच्छी खबर जो है वो दर्शकों के सामने लाते हैं हम, कि कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन भोगी अब 1 जनवरी 2025 से देश भर के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर पाएंगे. इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को फायदा पहुंचेगा. पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और पेंशन जारी होने पर तुरंत अकाउंट में जमा कर दी जाएगी. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. उन्होंने कहा कि देश में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन का वितरण पेंशन भोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करेगा. भट्टाचार्य जी, इस खबर पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी?
ये
तो बड़ी राहत की खबर है.
ये देखिए, ये जैसे आपने भी जिसमें कहा कि ये एक बहुत ही सकारात्मक सुधार है ये, और हमने कई सुधार हम देखते हैं, पर ऐसे कई सुधार होते हैं जो आम जनता को इमीडिएटली उनको ऊपर कोई असर नहीं होता है, दूरगामी असर होता है. पर ये जो सुधार है, ये सुधार मैं समझता हूं कि जो 78 लाख जो पेंशन भोगी जो हैं उनको जनवरी 2025 से जो मैं 4 महीने बाकी हैं उनके,
हाँ,
उसके लिए उनको पहले क्या होता था कि जो पेंशन भोगी जो होते हैं उनको वो जो सेंट्रल स्टेट ओन्ड बैंक्स जो होते हैं उन्हीं में वो चार पांच बैंक को बोला गया था, उन्हीं में वो खाता खोलना था। बहुत लोगों के वहां पे खाता नहीं होता है पर उनको जाकर खाता खुलवाना पड़ता है। तो ये मैं समझता हूं कि एक फाइनेंशियल डिप्रेशन था, उसको रोक दिया गया है। और अब ये कोई अपनी जो बैंक की जो अकाउंट है, उस बैंक की अकाउंट की नंबर अगर आप जब आप रिटायरमेंट कर रहे हैं वो नंबर अगर आप ईपीएफओ को बता दें और वो नंबर को आप सत्यापित कर दें, तो उसके बाद वो उसी अकाउंट में जिस अकाउंट में आपकी तनख्वाह जा रही थी उसी अकाउंट में आपकी पेंशन भी जाएगी। ये नहीं होगा कि पेंशन के लिए आपको एक नया एक कोई बैंक में जाकर जो बैंक उसके साथ जुड़ा हुआ है उसका खोलना पड़ेगा।
तो यानी कि जो पेंशनर्स हैं अगर वो जगह भी चेंज करते हैं कहीं पर भी तो देश के किसी कोने से भी
देश में किसी कोने से ये एक फाइनेंशियल अगर एक बहुत ही बड़ा एक 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 सुधार है इसके। और एक भी आयाम ये है कि अभी तक जो वो चार पांच छह जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो थे उनको एक एक ऐसा एक बिजनेस मिलता था ईपीएफओ से जो मैं समझता हूं कि वो सुधार के करीब कहीं नहीं था। वो एक रेगुलेटेड बिजनेस आ रहा था उनके पास। अब जो बैंक आपके साथ जुड़ा हुआ है उसी बैंक में आप अपना पेंशन ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक डिस्टॉर्शन था, वो उसको समाप्त कर दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी 78 लोग पेंशन के लिए और जो इस देश में सुधार की बात मानते हैं सुधार की जो मनोकामना करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर।
इनफैक्ट एकेबी यू जस्ट मेंशन ऑफकोर्स इट्स अ वेरी हार्डनिंग न्यूज फॉर द पेंशनर्स। आई मीन यू कैन ड्रॉ योर पेंशन अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक्स, बी इट द पीएसबीज और द प्राइवेट और एनीवन। बट आई एम ऑन अ डिफरेंट पॉइंट हियर। यू जस्ट मेंशन अबाउट द पीएसबीज दैट दे वर हैविंग सच सम डेडिकेटेड काइंड ऑफ बिजनेस कमिंग इन विद द पेंशनर्स काइंड ऑफ पार्किंग देयर मनी और ड्रॉइंग देयर मनी दैट पूल। So how much would an impact do you see this thing happening in the PSBs? And of course, the investors would be interested to know about the prospects of the PSBs in the coming days.
Well, I don't think it will mean a major financial impact because the large number of accounts maintained for pension drawal by the public sector banks were actually very low CASA, current account, savings account deposit. So they were not really contributing to a great amount of business or an interest income for them. Interest margin was very low for them. So I don't think banks will be financially hit, but certainly they will have to look for newer accounts at a time when the credit deposit ratio is low. At a time when the deposit, getting deposit is becoming difficult because the society in India is now gradually transitioning from being savers to investors. So therefore, for public sector banks, it is an extra challenge to get more customers, more depositors. Financially, I don't think they will be hit, but the bigger impact will be for the ease of living. Right. For these 7.8 million pensioners. So that to my mind is a big change that you don't need to change your bank account wherever you are, whatever bank account you have, you can get your pension, hard-earned pension that you are entitled to.
True. So we don't see any uptick or downslide happening in any of the...
Not financially, but certainly getting those accounts.
Yes.
Can you imagine that if 76 lakh or 7.6 million bank accounts right now are actually were a kind of a dedicated account for
four
the
to five
bank,
yes.
banks.
Yes.
But now going forward, the new pensioners will not be their secured accounts. And for all you know, that some of the 76 lakh account holders, pension account holders, may choose to shift back to their own bank account.
True.
Those public sector banks might lose their business.
Right. And moving on to some other stories, India's services sector activity surged to a 5-month high in August, due to resilient demand and easing inflationary pressure, as per the Services Purchasing Managers Index, that is the PMI, which was released today. The index compiled by the S&P Global highlighted that PMI numbers rose to 60.9 in August from 60.3 in July. In contrast, the PMI manufacturing has shown a downturn as the index dipped to a three-month low of 57.5 in August. The improvement in services has kept the overall composite PMI unchanged from July's, which was at, of course, at 60.7. AKB, as we were just discussing a while back, anything above 50, of course,
it's
a PMI. It's an expansion, we can say. And of course, you know, we were discussing about juxtaposing this with the figures within the U.S., right, which stands somewhere around 47 or something.
Yeah.
So still, at 60, we can say we are comfortably placed a bit.
Well, right now, the outlook is strong because, you know, the PMI index is actually, unlike most other data, like GDP or IIP, Index of Industrial Production, which are lagging data, in a sense that they tell you about what has already happened.
Right.
Now, the Purchasing Managers Index is not a lagging data.
It's a
forward-looking
data. It's a
leading, and therefore, it tells you that what kind of... So, the markets will take greater note. And the credibility of these numbers are the benefit of this number is huge.
Absolutely.
So therefore, when they show that the PMI, the purchasing managers feel that they are going to buy more stuff, they're going to invest more going forward, it means that the economic growth engine will keep revving
absolutely
the time to come. So 60
absolutely
is a good number.
Absolutely.
It shows that services sector, healthcare, IT, these are all
manufacturing,
these are all very, very good signs. So its need is to sustain this.
True.
And consumption demand, which is the last GDP number, showed that it's grown by 7% after a five-quarter high.
True.
So it's a good sign once again.
That's such an important point that you make, that it's a leading kind of a signal or indicator, if you may say so. Taking a cue from the stock markets, especially the F&O markets, if we may say so, where people kind of use so many of the indicators, and most of them are the indicators which are not leading indicators.
Yeah.
So yes, as I mentioned, 60 point something is really something which is heartening.
और बढ़ते अगली खबर की ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दौरे के बाद आज सिंगापुर पहुंचे. इस बीच सिंगापुर के एक बड़े ग्रुप ने भारत में बड़े निवेश की घोषणा की है. बता दें कि यह ग्रुप अगले चार साल में करीब 90,280 करोड़ रुपए का निवेश करेगी. यह कंपनी भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एशिया के सबसे बड़े विविध रियल एस्टेट समूहों में से एक कैपिटल लैंड ऑफ सिंगापुर ने भारत में प्रबंधन के तहत अपने फंड को दोगुना से अधिक करने की योजना बनाई है. उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि सिंगापुर की कंपनियां भारत में अपने निवेश को दोगुना कर रही हैं. तो निवेश दोगुना हो रहा है और सिंगापुर की ये कंपनी कर रही है, इस पर क्या कहेंगे?
इसमें देखिए, ये जो सिंगापुर की जो
कैपिटल लैंड ऑफ सिंगापुर,
ये एक इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि 2019 में जब अमरावती का एक नए कैपिटल, आंध्र प्रदेश का कैपिटल तैयार करने में उनको एक सिंगापुरियन ग्रुप समूह को ये नौता दिया गया था को बनाने का, पर जब वहां पे आंध्र प्रदेश में सरकार बदल गई तब ये डील कैंसिल कर दिया गया था. उससे सिंगापुर इंडस्ट्रियल जगत में इसमें काफी हलचल मची थी कि एक सरकार बदलने से आपका एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जा सकता है. मैं ये समझता हूं कि उसके बावजूद ये एक आशा का किरण दिख रहा है मुझे कि सरकार ने सिंगापुर सरकार के साथ बातचीत करके जो सिंगापुर इंडस्ट्री की पॉजिटिव इंटरेस्ट इंडियन इकोनॉमी में अभी भी बरकरार रखा है और वो फिर से वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं भारत की जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस में. मुझे ये नहीं क्लियर है कि वो अमरावती में कर रहे हैं या और कहीं कर रहे हैं, पर जो ये 90,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कमिट किया है ये दर्शाता है कि इंडिया एंड सिंगापुर की जो आर्थिक जो गतिविधियां, आर्थिक जो उनका जो रिलेशनशिप, जो संपर्क जो है वो अभी भी मजबूत है और 2019 में जो हुआ था उससे कोई उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर आ नहीं सका।
वो संक्षेप में आपसे एक प्रतिक्रिया लेंगे कि ब्रुनेई और सिंगापुर का ये दौरा आर्थिक रणनीतियों के हिसाब से भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
देखिए, ये एक आउटरीच है, आउटरीच प्रोग्राम है, और आउटरीच प्रोग्राम का मतलब यही है कि ऐसे जगह में, ऐसे देशों से, ब्रुनेई और सिंगापुर से अपनी जो, और ब्रुनेई में भारत के प्रधानमंत्री पहली बार एक पहले गए हैं, तो ये एक ब्रिज बिल्डिंग का एक समझ सकते हैं आप, ये मैं तो इसको एक नई शुरुआत की तरह देखूंगा।
और एशिया और यूरोप के बाजार का हाल जानते हैं। वैश्विक बाजार में भारी बिकवाली के बीच प्रमुख एशियाई सूचकांकों में गिरावट आई। जापान का निक्केई 4.42% गिर गया, कोरिया का कोस्पी 3.25% गिरा, सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स सूचकांक में 1.13% का नुकसान देखा गया, हांगकांग का हैंगसेंग 1.11% लुढ़क गया, और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 0.67% गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके उलट गिफ्ट निफ्टी 0.09% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। प्रमुख यूरोपीय सूचकांक आज नकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 1.09%, जर्मनी का डैक्स 0.87% गिरा, और लंदन का फुटसी 0.51% नीचे कारोबार कर रहा था। एशिया तो आज बहुत ही खराब वहां की स्थिति है,
एशिया की स्थिति मजबूत नहीं है। वहां पे जो इकोनॉमिक आउटलुक का है उसमें काफी सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। चाइना के का भी उसमें प्रभाव थोड़ा बहुत एशिया में आता है। तो मैं ये समझता हूं कि जो भारत की अर्थनीति है, ऐसे माहौल में अभी भी उसके पास एक अपना ही मार्केट बहुत बड़ा है, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की जिक्र की गई थी कि इंडिया का ग्रोथ में 7% का बोल रहे हैं, और उसी मार्केट में आप, उसी विश्व में अगर आप एशियाई में देखते हैं तो काफी उथल मुथल मच रही है। ये भारत के लिए सचेतन होना है, क्योंकि ये मार्केट में हम ज्यादा काफी एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट के लिए मार्केट को स्थिर होना जरूरी है, ये भी देखना है।
And moving on to the US market, the all major US stocks tumbled yesterday, registering their biggest daily drop since early August amid fears of slowdown in the US economy. The tech-heavy Nasdaq Composite plunged 3.2%, the S&P 500 descended 2.1%, and Dow Jones Industrial Average finished with a loss of 1.5%. AKB, just a while back we were discussing about the Asian shares plummeting, especially the Japan's Nikkei 4.4%. How much of the U.S. effect do you see in this plummeting of the Asian markets, especially Japan's?
To some extent, yes, there is an impact, a chain effect. But I think what happened in the U.S. is largely because of its the PMI number, unemployment number, and where you will be talking about the softening of the crude oil prices, because globally the demand for crude oil, even though we are entering into winter season, the demand is not very good.
Yeah, you mentioned about crude. Oil prices are trading with a slight gain after a plunge of more than 4% the previous day. In the global crude market, Brent crude was trading 0.27% up to trade at $73.95 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate, that is the WTI, was also trading 0.40% up at $70.64 per barrel when reports last came in.
और भारतीय सरफा बाजार में 24 कैरेट सोना अंतिम समाचार मिलने तक मामूली गिरावट के साथ 71,550 रूपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी 999 फाइन मामूली बढ़त के साथ 83,190 रूपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। एके भट्टाचार्य जी मार्केट मंथन में आए और हमारे श्रोताओं को आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार,
थैंक यू सो वेरी मच एके बी एज ऑलवेज। एंड बिफोर वी क्लोज, हियर द रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। इंडियाज इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स शेड्स ओवर 200 पॉइंट्स, वाइल द निफ्टी 50 एंड्स इट्स 14 डेज ऑफ विनिंग स्ट्रीक अमिड द यूएस रिसेशन वरीज। India's services PMI surges to 5-month peak in August on resilient demand, and oil prices trading with a slight gain after a plunge of more than 4% on the previous day. Well, that's it in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with my co-anchor Vibhuti Mishra saying goodbye.
Namaskar.
मार्केट का।